नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। संकट में फंसी एयरलाइन गो फर्स्ट ने अब अपनी उड़ानें 4 जून तक रद्द कर दी। एयरलाइन के भविष्य को लेकर अनिश्चितता के बीच ये कदम उठाया गया। गो फर्स्ट ने सबसे पहले 3 मई को अपनी उड़ानें बंद कर दी थी। ताजा घोषणा के बाद किफायती सेवाएं देने वाली एयरलाइन की उड़ानें 1 माह तक ठप रहेंगी। एयरलाइन ने 2 मई को घोषणा की थी कि वह 5 मई तक 3 दिन के लिए अपनी उड़ानें रद्द कर रही है। एयरलाइन ने मंगलवार को ट्वीट किया, हमें ये सूचित करते हुए खेद है कि गो फर्स्ट की अनुसूचित उड़ानें 4 जून 2023 तक रद्द कर दी गई हैं। एयरलाइन ने कहा कि यात्रियों को उनकी टिकट का पूरा पैसा वापस किया जाएगा। एयरलाइन ने कहा कि वह जल्द बुकिंग फिर से शुरू करेगी। वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार कंपनी ज़ेबिया ने क्षेत्र में अपनी उपस्थिति मजबूत करने के लिए जयपुर में अपने नए प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया। कंपनी के एक अधिकारी ने कहा कि नए प्रौद्योगिकी केंद्र की शुरुआत जयपुर जैसे शहरों में कारोबार का विस्तार करने की कंपनी की वैश्विक रणनीति के अनुरूप है। कंपनी की विस्तार रणनीति पर ज़ेबिया के वैश्विक मुख्य कार्यपालक अधिकारी आनंद सहाय ने कहा कि जयपुर के पास जीवंत शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र है और ये एक महत्वपूर्ण प्रतिभा केंद्र के रूप में काम करेगा। सहाय ने कहा, जयपुर जैसे शहरों में कार्यालय स्थापित करने का निर्णय हमारी दूरंदेशी प्रतिभा रणनीति के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य प्रतिभाशाली व्यक्तियों को काम के अवसर प्रदान करना है। चीन में कारखाना गतिविधियों में मई में गिरावट आई। इससे ये संकेत मिलता है कि वायरस नियंत्रण उपायों के समाप्त होने के बाद चीन का आर्थिक पुनरुद्धार सुस्त पड़ा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय और एक उद्योग समूह द्वारा जारी मासिक खरीद प्रबंधक सूचकांक अप्रैल के 49.2% से गिरकर मई में 48.4% पर आ गया। इस सूचकांक के 50 से नीचे होने का मतलब सुस्ती है। अमेरिका, यूरोप और एशिया के केंद्रीय बैंकों द्वारा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी के चलते वैश्विक मांग कमजोर पड़ने से चीनी विनिर्माताओं को चोट पहुंची। घरेलू मोर्चे पर वायरस रोधी अंकुश हटने के बाद चीन में यात्रा और कारोबारी गतिविधियां बढ़ी हैं, लेकिन इसमें सुधार की रफ्तार उम्मीद से कम है। चीन की आर्थिक वृद्धि दर मार्च में समाप्त तिमाही में 4.5% रही। इसे पिछली तिमाही में ये 2.9% रही थी। सरकार के सालाना 5% के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आगामी तिमाहियों में इसमें बढ़ोतरी जरूरी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और क्रियान्वयन ट्रस्ट के तहत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और राज्यों से समस्याओं को दूर कर लंबित मुद्दों का समाधान करने का आग्रह किया। NICDIT के अंतर्गत पर्यावरण अनुकूल सभी सुविधाओं से युक्त और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं के साथ नए स्मार्ट औद्योगिक शहरों का निर्माण किया जाना है। ये PM गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के ढांचे के तहत है। इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे का निर्माण करना और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने और भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में मजबूती से स्थापित करने के लिए आवंटन को लेकर भूखंड तैयार रखना है। देश के प्रमुख चाय क्षेत्र दार्जिलिंग के चाय उत्पादक चाय की उत्पादकता घटने और निर्यात गंतव्यों से कम कीमत मिलने के दोहरे झटकों से परेशान हैं। उद्योग निकायों ने मंगलवार को कहा कि पश्चिमी यूरोप और जापान जैसे पारंपरिक बाजारों में मंदी वाली आर्थिक स्थिति के कारण उन्हें मिलने वाली कीमतों में कमी आई। उन्होंने कहा कि 87 दार्जिलिंग चाय बागानों के उत्पादन का आकार, जो प्रति वर्ष 80 लाख किलोग्राम से अधिक हुआ करता था, जलवायु परिवर्तन और कीटों के हमलों के कारण 65 से 70 लाख किलोग्राम रह गया। भारतीय चाय निर्यातक संघ के अध्यक्ष अंशुमन कनोरिया ने कहा, दार्जिलिंग चाय उद्योग ICU में है। उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है, जबकि प्रतिकूल जलवायु के कारण फसल उत्पादन में गिरावट आ रही है। निर्यात भी निराशाजनक आर्थिक स्थिति के कारण घट रहा है। पश्चिमी यूरोप और जापान से मिलने वाली कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि दार्जिलिंग में कई बागान बंद होने के कगार पर हैं, क्योंकि परिचालन जारी नहीं रखा जा सकता। उन्होंने कहा कि संघ इस ज्वलंत मुद्दे पर चाय बोर्ड को संवेदनशील बनाने की कोशिश कर रहा है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन का एकीकृत शुद्ध लाभ बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में 2.63% बढ़कर 1,140.97 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। देश की सबसे बड़ी एकीकृत लॉजिस्टिक्स कंपनी ने इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 1,111.63 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। बीएससी को भेजी सूचना में कंपनी ने कहा कि तिमाही के दौरान उसकी एकीकृत कुल आय बढ़कर 6,179.12 करोड़ रुपए पर पहुंच गई, जिससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 4,739.08 करोड़ रुपए थी। तिमाही के दौरान कंपनी का खर्च भी 3,497.49 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,993.62 करोड़ रुपए पर पहुँच गया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि परियोजनाओं में होने वाली देरी को कम करने तथा निर्माण लागत में कमी के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सटीक बनाए जाने की जरूरत है। आधिकारिक बयान के अनुसार गडकरी ने यहां राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की और राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की। बयान में कहा गया कि बैठक में कार्य दक्षता बढ़ाने, बाधाओं के समाधान और नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी अपनाने पर चर्चा की गई। गडकरी ने दक्षता बढ़ाने और राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवागमन में सुगमता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2 मोबाइल ऐप भी पेश किए। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।